सर्वांतर्यामी परमेश्वर की महती अनुकंपा महापुरुषों की दिव्य मंगलमय प्रेरणा से प्रातःकाल विद्यारण्य स्वामी जी के द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ उसके सातवां अध्याय तृप्तिदीप प्रकरण जिस पर हम लोग चिंतन मनन कर रहे हैं, जो विपरीत भावना है उसका निराकरण कैसे हो सकता है, तो उसके ऊपर विचार चल रहा था। जीव ब्रह्म की जो ऐक्यता है, आत्म अभिन्न जो ब्रह्म है उसका चिंतन कथन प्रबोधन बार बार करने से, नित्य निरंतर करने से, अनंत जन्मों से बनी हुई जो विपरीत भावना है वो नष्ट होती है। शंकराचार्य भगवान एक जगह पे लिखते हैं, आत्मा ज्ञानमयो पुण्यो देहो मांसमयो शुचि तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किम् अज्ञानतः परम। कहते जो आत्मा है तो ज्ञानमय है, पुण्य है, जो शरीर है ये मांसमय है, अस्थि मज्जा मेद कफ पित बाप सारी दुर्गंधियों से परिपूर्ण है, अशुचि है, फिर भी अविवेक से अज्ञान से दोनों में एकता के भ्रम हो गया है। शरीर अलग है और शरीर को प्रकाशित करने वाला जो ज्ञान है वो अलग है, ऐसा विवेक नहीं हो पाता है। तो कैसे विवेक होगा उसके बारे में यहां विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं कि एकाग्रता करनी पड़ेगी। एकाग्रता शब्द का अर्थ है निधिध्यासन, निधिध्यासन करना पड़ेगा। श्रवण से जो निश्चय हो गया है उस चीज को शास्त्रीय युक्तियों के द्वारा मनन करना पड़ता है। मनमानी यदि आप करेंगे तो नहीं बनेगा, इसलिए गुरु परंपरा से शास्त्रों को अनुशीलन करते हुए साधक जब उस प्रकार चिंतन करता है तो एक निष्कृष्ट अर्थ उसको प्राप्त होता है और उसी में उसका मन को टिकाना है, उस जगह पे मन को टिकाना है लंबे समय तक, सतत धारा प्रवाह अखंड प्रवाह की जैसे मन को उसमें टिकाना है। तो जब एकाग्रता हो जाएगी शरीर का भान नहीं रहता है। कभी आप देखेंगे, विचार करेंगे, व्यक्ति सिनेमा देख रहा है, सोच लीजिए, अब जब सिनेमा देखेगा तो उस समय शरीर का भान नहीं रहेगा। यदि आप उस विषय पर मन को स्थिर करेंगे तो शरीर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ पता नहीं लगेगा। तो इसी प्रकार प्रयास के द्वारा, निधिध्यासन अपने आप होता नहीं, प्रयास के द्वारा आत्मा अभिन्न जो ब्रह्म है उसमें मन को टिकाना है। उस प्रकार की वृत्ति, अहम ब्रह्मास्मि की वृत्ति जो है नित्य निरंतर चलाना पड़ेगा। यही ब्रह्म अभ्यास है, उसको अनुभव करने का माध्यम है। तो इसमें श्रुति और स्मृति के दोनों उदाहरण प्रस्तुत किए। बृहदारण्यक श्रुति को लेकर के कहे कि नानुध्यायन बहुत शब्दान वाचो विकलापनम हितत। यहां बहुत शब्द का मतलब मोक्ष शास्त्र को छोड़ करके दूसरे ग्रंथों का चिंतन नहीं करना चाहिए। जो मोक्ष शास्त्र है, गीता, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र अथवा ब्रह्म को बोधन करने वाले दूसरे भी कोई ग्रंथ है उसका चिंतन कर सकते हैं। इससे भिन्न यदि दूसरे आप कुछ चिंतन करेंगे तो आपकी वृत्ति जो है खंडित हो जाएगी, तदाकार वृत्ति फिर नहीं बन पाएगी। इस प्रकार श्रुति का कथन के और स्मृति में भी अनन्यास चिंतयंतो माम, अभिन्न रूप से, अभेद रूप से परमात्मा का चिंतन जो है वहां विधान किया गया है। कुछ लोगों में शंका होती है कि यदि ऐसे चिंतन करेंगे तो फिर हमारी योग क्षेम का वहन कैसे होगा। तो दिन रात यदि भगवान का ही चिंतन करेंगे तो यहां बतलाए भगवान जो है कोई अलग चीज नहीं है, जो समष्टि है व्यष्टि से भिन्न नहीं है, वही है, बोध नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए परमात्मा स्वयं ही उस साधक का योगक्षेम वहन करते हैं। बहुत जगह पे ऐसे दिखाई पड़ता है, मैं नर्मदा परिक्रमा कर रहा था तो एक व्यक्ति बता रहे थे उसमें, तो एक अच्छे साधक है, तो एक बार विचार किए कि मां के दर्शन जब तक नहीं होगा ना भोजन नहीं करूंगा, ऐसा एक संकल्प उनके मन में आया। और वहां जंगल ही जंगल है, झाड़ी है, नर्मदा जी की किनारा है, और पास में कोई गांव वगैरह भी नहीं है, और उसमें एक नदी के किनारे पेड़ के नीचे बैठ गए। अब एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, तीन दिन हो गया, चार दिन हो गया, वो अभी चल नहीं सकते, चार दिन हो गया पानी भी नहीं पिए, भोजन भी नहीं किए। तो थोड़ा 15-20 किलोमीटर में कुछ आदिवासी बस्ती है, तो वहां ठीक रात में 3:30-4 बजे जो है ना, उनको एक माताजी थी, आवाज सुनाई पड़ी, मैं बहुत भूखा हूं मुझे कुछ खिलाइए, ऐसे आवाज आई। तो माताजी चौंक करके बैठी, कहां से ये आवाज आ रही है। फिर भी जो भी घर में था ना वो बोली कि देखो कहीं नर्मदा किनारे कोई महात्मा तो नहीं है, और उनके पति को कहेगी कुछ सामान देकर कि आप जल्दी जाओ। वो रात में वो बेचारा नर्मदा किनारे गए, और वहां भाई कौन, कोई है क्या यहां किनारे में, ऐसे चिल्लाए वो आकर के। और जो महात्मा थे उनके मुख से शब्द भी नहीं निकले, कुछ खाए पिए नहीं है तो शब्द कहां से आएगा। तब तक फिर सवेरा हो गया, ढूंढे इधर उधर, देखे कि भाई एक महात्मा पड़ा हुआ है पेड़ के नीचे। अब ये आकर के यार भोजन करो, तो उन्होंने कहा मैं नहीं भोजन करूं, जब तक माता जी नहीं खिलाएंगे मैं खाऊंगा नहीं। तो उन्होंने कहा वही तो चिल्लाई सवेरे सवेरे कोई आवाज आई, नहीं तो मैं कहां 20-22 किलोमीटर दूर में रहता हूं, वहां से आपके लिए ही आया हूं। फिर उनको बैठा करके खिलाए। तो कहने का अभिप्राय जो ईश्वर अनुसंधान में लगा हुआ है, परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में लगा हुआ है, उसके योग क्षेम स्वयं परमात्मा ही बहन करते हैं। वो किसी ना किसी के माध्यम से, सबके अंदर परमात्मा है कि नहीं, सबके अंदर है, किसी ना किसी के माध्यम से कुछ प्रेरणा दे करके उसको जो है उसका जो भी योग क्षेम है उसका बहन करते हैं। यहां इसमें बतलाया गया है इन दोनों चीजों को लेकर के, हृदय हृतयो हो श्रुति स्मृति और तात्पर्यम आहम। 9 नंबर श्लोक देखिए। इति श्रुति स्मृति नित्य मात्मन्येकाग्रताम धियः विधत्तो विपरीताया भावनायः क्षयाय हि। इति श्रुति स्मृति आत्मनि धिय नित्यम एकाग्रताम विपरीता भावनाया क्षयाया ही विधत्तो। इसमें कहते हैं इसी प्रकार जो श्रुति और स्मृति है, इन दोनों के द्वारा आत्मनि धियः नित्यम एकाग्रतम, आत्मा में बुद्धि को सदा नित्य निरंतर स्थिर करने के लिए किसलिए विपरीताया भावनाया क्षयाया ही विधत्तु। जो विपरीत भावना हो गई है कि मैं शरीर हूं, संसार सत्य है, ये भावना है, इन भावनाओं को नष्ट करने के लिए श्रुति स्मृति में यही चीज बतलाई गई है। टीका में देखिए इति, इसी प्रकार एते श्रुति स्मृति विपरीत भावना निवृत्तये आत्मनि सदा चित्ते काग्रम प्रतिपादयत इत्यर्थः। एते दोनों जो है श्रुति और स्मृति, जो बृहदारण्यक स्मृति श्रुति और गीता के जो दोनों दिए इसमें, किसके लिए विपरीता भावना निवृत्तये, जो विपरीत भावना हो गई है, कितने भी कोशिश करने से मैं चैतन्य हूं ऐसा बोध नहीं होता है, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मेरे बाल पक गए, थोड़ा ग्रे, अभी बाल को ग्रे करना पड़ेगा, दांत नष्ट हो गए तो दांत लगाना पड़ेगा, शरीर में आत्मबुद्धि हो जाती है, जो शरीर है जो प्रतिपल कभी वृद्धि को प्राप्त होता है कभी ह्रास होता है, षट प्रकार भाव विकारों से यो गति करता है, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यते, ये नित्य निरंतर इन भावों से शरीर गति करता है, सारा संसार इस रूप में है, और इन सब चीजों को जानने वाला मैं हूं, अविनाशी हूं, नित्य हूं, सत्य हूं, सदा विराजमान हूं, इसका बोध नहीं हो पाता है। तो इसलिए यहां दोनों के माध्यम से उस विपरीता भावना को हटाने के लिए आत्मा में सबसे पहले आत्मा को जो है निश्चय करना पड़ेगा, आत्मा क्या चीज है, वो शरीर है, इंद्रियां है, मन बुद्धि है, अहंकार है अथवा इससे परे है। देखो इसको थोड़ा सा अनुभव करने के लिए सुषुप्ति का अब यदि चिंतन करेंगे ना, भगवान बहुत कृपा करके सुषुप्ति भी दिए हैं उसका अनुभव करने के लिए। सुषुप्ति में शरीर इंद्रियां मन बुद्धि का बोध नहीं रहता है, लेकिन स्वयं विद्यमान रहता कि नहीं रहता है, और स्वयं यदि विद्यमान नहीं रहता ना, उसको श्मशान में ले जाना चाहिए सीधा उठा करके, राम नाम सत्य है, लेकिन उसकी विद्यमानता है जिसके कारण विद्यमानता से ही उसमें जो है प्राण जो है चलता है, जो प्राण चलता है, अब फैन चल रहा है तो बिजली होगी कि नहीं होगी, श्वास प्रश्वास जो कहीं भी क्रिया होती है ना, उसको करने वाला चाहिए, करने वाला यदि नहीं होगा तो क्रिया नहीं होगी। केवल आत्मा की विद्यमानता उपस्थिति में ये सारी क्रियाएं होती है, चक्षु देखती है, श्रवण इंद्रिय से हम सुनते हैं, मन से संकल्प विकल्प करते हैं, बुद्धि से निश्चय करते हैं, पैर से चलनात्मक कर्म होता है, हाथ से आदान प्रदान होता है, लेकिन आत्मा की विद्यमानता में मृत्यु के समय कुछ होता है क्या उसमें, एकाध तो श्लोक बोलेगा कि नहीं जो व्यक्ति मर चुका है अभी, लेकिन वो विशिष्ट आत्मा जिसको हम लोग मृत्यु कहते हैं ना, अंतःकरण विशिष्ट जो आत्मा है शरीर से हटता है, शुद्ध जो आत्मा है वो सर्वव्यापक है, जितना चेतन में है उतना जड़ में भी है, अंतःकरण को लेकर के जड़ और चेतन के उसमें फर्क आ जाता है। तो इसी प्रकार यहां आत्मनि सदा चित एकाग्रम प्रतिपादयत इत्यर्थः, आत्मा को पहले इसको कहते हैं त्वम पदार्थ शोधन, त्वम शब्द का जैसे गुरु आपको तुम कहेंगे तो कहेंगे मैं अहम, तो अहम का शोधन करना पड़ता है, वो क्या चीज है। तो बार बार जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जागृत स्वप्न सुषुप्ति के साथ यदि विचार करेंगे और कहीं ना कहीं कोई चक्र चल रहा है तो एक स्थिर वस्तु होना चाहिए, कोई स्थिर तत्व हो जिसमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये जो है चलती रहती, घूमती रहती है, तीन अवस्था। और जिसमें ये तीन अवस्था आती जाती रहती है वो स्वयं आप हैं, आप ही जानते हैं, जागृत को भी जानते हैं, स्वप्न को भी जानते हैं, सुषुप्ति को भी जानते हैं। थोड़ा जैसे आप सवेरे ध्यान करते हैं तो ध्यान करते समय विचारों को व्यक्ति देख लेता है, थोड़ा सा आप स्थिरता में जाएंगे ना, तो आप ध्यान में बैठे हैं, ध्यान में बैठे बैठे आप अपने विचार को देखें, आज बारिश हो रही है सत्संग में जाऊं कि नहीं जाऊं, अब विचार चल रहा है उसमें, अब उस विचार को जो प्रकाशित कर रहा है, जो जानता है, जाऊं अथवा नहीं जाऊं, दोनों को जो प्रकाशित करता है वो स्थिर तत्व है, और उसी में ही एकाग्रता करनी है। तो इसलिए यहां कहते हैं आत्मनि सदा चित्त एकाग्रताम प्रतिपादयत इत्यर्थः, यही इसमें प्रतिपादन किया गया है जिसके माध्यम से विपरीता भावना जो है नष्ट होगी। यहां शंका करते हैं आगे, ननु देहाद्यात्मत्व बुद्धि हे जगत सत्यत्व बुद्धिश्च कुतो विपरीत भावनयात्म इति आशंक्य तल्लक्षण योगाद इति दर्शयितुम तस्य लक्षण माह। देहादि में आत्मत्व बुद्धि, जगत में सत्वत्व बुद्धि, ये कैसे है, कुतो विपरीत भावनात्म, विपरीत भावना से इस प्रकार हो जाता है। एक दिन में नहीं अनंत जन्मों से चल रहा है, अभी तक वो विपरीत भावना नष्ट नहीं हुई जिसके कारण हमको फिर संसार में आना पड़ा। वो यदि नष्ट हो जाए तो जीव जो है मुक्त हो जाएगा। तो किस प्रकार होता है उसका लक्षण जो है, तल लक्षण योगाद इति दर्शयितुम तस्य लक्षण महा, तस्य का मतलब विपरीत भावना की लक्षण जो है आगे के श्लोक में बताते हैं। यद यथा वर्तते तस्य तत्त्वं हित्वान्यथात्वधिः विपरीता भावना स्यात् पित्रादावरिधिर्यथा। इसमें बताना चाहते हैं विपरीत भावना, उसके लक्षण बता रहे हैं इस श्लोक से। यद यथा वर्तते, यद वस्तु यथा वर्तते तस्य तत्त्वं हित्वा अन्यथात्वधिहि, विपरीता भावना, जो वस्तु जैसा है उस वस्तु को छोड़ करके उसके ऊपर दूसरा कुछ आप आरोप कर लिए, जैसे रस्सी रस्सी रूप से रहती है, अब उस रस्सी को रस्सी रूप में नहीं देख करके उसमें सर्पत्व का आरोप कर दिए, तो रस्सी में सर्पत्व को देखना यही विपरीत भावना है। जो जैसा है, जैसे आप स्वयं चेतन है, चेतन होने पर भी जड़ वस्तु शरीर को उसमें आरोप कर लिए और मेरा जन्म इतने में हुआ, मेरी शादी इतने डेट पे हो गई, अब मैं इतने में वृद्ध हो गया हूं, सारे बाल जो है पक गए हैं, आगे चल करके फिर सीताराम होने वाला है, तो इस प्रकार आप शरीर के जो गुण धर्म है ना उसको आरोप करते रहते हैं। वो सर्वव्यापक तत्व है, सर्वव्यापक होने पर भी शरीर परिच्छिन्न है, ऐसी परिच्छिन्न बुद्धि उसमें आरोप कर लेते हैं, तो मैं तो 3.5 हाथ का हूं, मैं गोरा हूं अथवा काला हूं, लंबा हूं अथवा नाटा हूं, पतला हूं या मोटा हूं, ये सब आरोप करते हैं। शरीर के गुण धर्मों को आत्मा में आरोप किया, यही विपरीत भावना है। यद यथा वर्तते तस्य तत्त्वम हित्वा, उसके तत्व को त्याग करके अन्यथात्व भी विपरीता भावना, उसमें अन्य प्रकार से आरोप कर लिए, इसी को विपरीत भावना कहते हैं। तो यहां दृष्टांत देते हैं, यथा पित्रादो अरिधि, पिता में शत्रु बुद्धि, जो जन्म किया है ऐसे माता पिता, उसी में कोई यदि शत्रु बुद्धि करता है, इसी को विपरीत भावना है। टीका में देखिए, यद वस्तु सुक्त्यादि यथा येन सुक्त्यादि रूपण्यो वर्तते तस्य तत्त्वं सुक्त्यादि रूपत्वं परित्यज्य अन्यथात्वधि अन्यथात्वस्य रजतादि रूपत्वस्य धीर ज्ञानं विपरीत भावना स्यात्। यद, यद शब्द का अर्थ करते हैं यद वस्तु, सुक्त्यादि यथा ये न सुक्त्यादि रूपेण वर्तते, सुक्ति सुक्तित्व रूप से रहता है, सुक्ति सुक्ति जो है वस्तु है उसमें सुक्तित्व है, सुक्ति में सुक्तित्व रहेगा, जैसे घट में घटत्व है, मनुष्य में मनुष्यत्व है। अब कोई मनुष्य को कहे, अब जैसे यहां इतने लोग सत्संग कर रहे हैं, अब सत्संग कर रहे हैं, चलो आत्मा बुद्धि नहीं होने पर भी मनुष्य की बुद्धि है कि नहीं है, सबको है, मैं मनुष्य हूं ऐसे। लेकिन जब सत्संग खत्म हो जाएगा, जब बाहर जाएंगे, सारे गधे निकल रहे हैं, देखो यहां से है गधा कहने वाला कौन है तुते तुम। लेकिन कोई यदि कहे ऐसा है ना, तो तुरंत वो शब्द को व्यक्ति आरोप कर लेता है, विवेक नहीं कर पाता है। एक बार कहते हैं स्वामी शिवानंद जी महाराज ऋषिकेश में थे, तो दो साधक थे, और साधक केवल नहीं नहीं गए थे आश्रम में, आश्रम में गए तो किसी कारण से परस्पर में थोड़ा सा विद्वेष हो गया, और छोटी छोटी बातों को लेकर के एक दूसरे को आरोप करते रहते थे। तो एक दिन सवेरे सवेरे एक कहा कि कुत्ता है ऐसे, तो दूसरा कहा कि बिल्ली है, तो ये उसको कुत्ता कहा, वो उसको बिल्ली कहा, ऐसे उनके झगड़ा जो है बहुत आगे बढ़ गया। और ये इसके बाल पकड़ रखा है, वो उसके बाल पकड़ रखा है, और बात यहां तक हुई कि कहा इस कुत्ते को अभी स्वामी जी के पास लेकर के जा रहा हूं, तो दूसरा कहा कि मैं भी इस बिल्ली को छोड़ने वाला नहीं, स्वामी जी के पास लेकर के जाऊं। और दोनों एक दूसरे के बाल पकड़ करके ऐसे गाली गलौज करते करते तो स्वामी जी बैठे थे ध्यान में, उनके पास गए, और स्वामी जी को, स्वामी जी देखिए ये कुत्ता मुझे ऐसे कहता है, वो भी कहा कि बिल्ली मुझे ऐसे। तो स्वामी जी देखे दोनों को और फिर उनके चारों तरफ थोड़ा सा घूमे, अरे तुम्हारे तो पूंछ नहीं है, फिर बिल्ली और कुत्ता कैसे हुए? बिल्ली और कुत्ता में तो कम से कम पूंछ होती कि नहीं। तो इसीलिए कहने का मतलब, शब्द को हम लोग सत्य मान करके अपने ऊपर ही आरोपित कर लेते हैं। अच्छा, जितने भी शब्द है उसको यदि आप आरोप नहीं करेंगे, आप शुद्ध है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई गधा कहे, कुत्ता कहे, मूर्ख कहे, चाहे कुछ भी कहे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस शब्द को यदि आप सत्य मान लिए और उसका चिंतन करने लग गए, फिर झगड़ा झंझट सब कुछ हो जाता है, यही विपरीत भावना है। तो जो सुक्ति है, जिस रूप से है, सुक्ति सुक्ति रूप से है, यथा येन सुक्त्यादि रूपेण वर्तते तस्य तत्त्वं सुक्तित्वं सुक्त्यादि रूपत्वं परित्यज्य, उसको आप त्याग कर दिए और उसके ऊपर अन्यथाधि अन्यथात्वस्य रजतादि रूपत्वस्य धीर ज्ञानं विपरीत भावना स्यात्। अब सुक्ति में आप क्या देखिए, रजत को, जिस जो व्यक्ति थोड़ा सा लोभ से ग्रस्त होगा ना, और दिन में घूम रहा है जैसे समुद्र किनारे कहीं रेती में नदियों में, तो वहां जो है सुक्ति उसमें पड़ी हुई रहती है, रेती में प्राय ऐसे मिली हुई रहती है। अब देखेगा तेज धूप यदि वहां पड़ रही है तो उसके चाकचक्यता जो है बढ़ जाती है, रजत जैसे दिखाई पड़ेगा। वो व्यक्ति थोड़ा आगे पीछे देख करके पता नहीं भगवत कृपा से यहां मुझे मिल गया होगा, ऐसे करके उठाने के लिए जब जाएगा तो देखता है अरे ये तो नहीं है, पहले भ्रम हो गया था, जब हाथ से स्पर्श करके देखता है तब तो पता लगता है कि नहीं नहीं ये सुक्ति है, रजत नहीं है। तो रजत को देख लेना विपरीत भावना जो है नष्ट हो जाती है, लेकिन नहीं देख करके रजत तत्व यदि बुद्धि उसमें हो जाए तो यही विपरीत भावना है। कहते हैं एक बार स्वामी अखंडानंद जी महाराज है ना, उनके दादाजी के साथ ग्रैंडफादर बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए गए। उस समय चल करके जाना पड़ता था, कुछ चावल दाल भी साथ में लेकर के गए थे। अब उनके जो ग्रैंडफादर थे वो भी बहुत बड़े विद्वान हैं, ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े वेत्ता थे, लेकिन ऐसे चलते चलते ऋषिकेश तक पहुंचे, फिर थोड़ा रेस्ट किए, कितने दिन में तय करेंगे, विचार किए कैसे चलना है, फिर चलना स्टार्ट किए। तो एक दिन एक झरना में स्नान करने के लिए गए। पहले अखंडानंद स्वामी जी स्नान कर लिए, पता नहीं फिर भोजन भोजन बनाने के लिए गए, उनके बाद उनके दादाजी गए स्नान करने के लिए। अब स्नान कर रहे थे, कभी कभी कई दिन से थोड़ा साबुन लगाए शरीर में, अब साबुन लगाने से जो अंगीठी है ना रिंग वो खिसक गई, वो ठंड पानी है पता नहीं लगेगा। अब स्नान करके आया, रे बहुत मस्त लगा, बहुत अच्छा जल था, झरना का पानी था, और आकर के बैठ, अरे मेरी रिंग कहां गई, दृष्टि जब पड़ी तो मेरी रिंग कहां गई। अब उसे अखंडानंद स्वामी का नाम शांतनु था पहले का नाम, तो क्या आए शांतनु तो एक मिनट में आता हूं, तो बोले कहां, नहीं नहीं ऐसे रिंग जो है खो गई ना, वहां स्नान करते समय कहीं गिर गई, कहां स्नान किया हूं मुझे पता है, वहां गिरी होगी, मैं लेकर के आता हूं। वहां गए और वहां गए ढूंढे तो रिंग तो मिली नहीं वहां, लेकिन दूसरी रिंग मिल गई और उनसे उससे बड़ी रिंग थी, उनके पास जो रिंग थी तो छोटी थी, उससे बड़ी रिंग मिल गई। वो कहे देखो भगवत भगवान जिसके ऊपर कृपा करते ना छप्पर फाड़ करके देते, खुश हो गए, बोले देखो बड़ी रिंग मिल गई, चलो इसको जाने के बाद फिर घर में फिर सेटिंग करके पहनूंगा। अब फिर उसके बाद बद्रीनाथ गए, खूब दर्शन किए, लौट करके आ गए ऋषि के, इतने में उनके पैसा सब खत्म हो गया। और बोले कि ट्रेन में जाएंगे कैसे, रास्ते में कुछ खाना पीना भी करना पड़ेगा। तो बोले शांतों ने ऐसा करो, यहां कोई सोनार होगा तो इसको लेकर के बिक्री को जो भी पैसा होगा आगे चले जाएंगे। तो जैसे ऐसे गए तो वो जो सोनार है, सोनार को पता लगेगा कि नहीं लगेगा, तो देखा है भाई ये कहां सोना है, पीतल है ये, महात्मा बन करके मेरे को झूठ बोलने के लिए आ गए, और गाली वाली दे दी। तो अखंडानंद स्वामी जी उसको लेके कहे रखो आप अपने सोने के रिंग, बोले क्या हुआ, सोना नहीं है ये, ये तो पीतल है, और पीतल और सोना एक जैसे, सोने से भी ज्यादा चकमक कर रहा था वो। अब वहां फेंके फिर उसको, इतने दिन तक हम लोग विपरीत भावना से थे कि ये सोना है करके, जबकि वो पीतल है। तो ठीक इसी प्रकार शरीर को हम लोग आत्मा मान रहे हैं, शरीर तो जड़ पदार्थ है, परिवर्तनशील है, उत्पन्न हुआ है नष्ट भी होगा, आदि अंत वाला है, उसको मैं मानना यही विपरीत भावना है। सुक्ति को रजत मानना जिस प्रकार विपरीत भावना है, शरीर को मैं मानना यही विपरीत भावना है। अतस तस्मिन बुद्धि रीति यावत, शंकराचार्य भगवान उसमें ब्रह्मसूत्र में अतस्मिन तद्बुद्धि भ्रम के भ्रम का लक्षण बतलाए। तद भिन्न में तद्बुद्धि। अतस्मिन का मतलब सुक्ति रजत भिन्न सुक्ति में रजतत्व बुद्धि, रजत से भिन्न तस्मिन तद्बुद्धि तो शुद्ध ज्ञान के लक्षण हो जाएगा। तस्मिन तद्बुद्धि ज्ञान के लक्षण है, लेकिन अतस्मिन तद्बुद्धि भ्रम का लक्षण हो जाएगा। रजत भिन्न में, रजत भिन्न का अभिप्राय हो गया सुक्ति, अतस्मिन तद्बुद्धि रजत बुद्धि यही भ्रम है। ताम उदाहरति पित्रादो इति, पिता में जैसे शत्रु बुद्धि, पिता में तो पूज्य बुद्धि होनी चाहिए अथवा मित्र बुद्धि होनी चाहिए, जो पैदा करते हैं सब प्रकार के सुख सुविधा देते हैं, कैसे उसका कुशल होगा मंगल होगा उसका जो चिंतन करते हैं। अब जैसे कभी पिता आपको कहेंगे विषम भुंक्षो, अब शब्द तो प्रयोग कर रहे हैं विष खाओ, लेकिन उस शब्द का वो अर्थ नहीं है, लक्षणा से उसका अर्थ है कि शत्रु के साथ मत उठो बैठो, शत्रु के घर में मत जाओ तो तुम्हारा कल्याण होगा। कल्याण भावना से उस प्रकार कभी कभी शब्द प्रयोग किया जाता है, तो लक्षणा से उसके अर्थ जो है बोध होता है। अब ये सब तो शास्त्रों में जो लिखा होता है ना, जब तक आप परंपरा से गुरु मुख से नहीं सुनेंगे तो नहीं पता लगेगा क्या अर्थ है उसका। एक बार एक महात्मा भिक्षा मांगने के लिए गए, एक दो दिन से भूखे थे, किसी के घर में गए कि माता रोटी दे दो, भिक्षा मांग रहे थे। तो घर से एक छोटी सी लड़की आ गई तो कहे कि माता जी रोटी दे दो, जो छोटी लड़की थी ना, टमाटर खाओ। क्या बोली? टमाटर खाओ। अरे बोले कि बहुत भूख लग रही बेटी, रोटी दे दो। तो बोले कि टमाटर खाओ। अब ये कहेगी भाई कुछ भी मिलता है तो खा लेना चाहिए, चलो बेटी टमाटर दे दो। इतने में घर से उसकी माताजी आई कि महाराज जी इसके पीछे मत पड़िए, ये तोतली है कमाकर खाओ बोल रही है, तोतली है वो, टमाटर खाओ बोले कमाकर खाओ बोल रही है, आपको बात समझ में नहीं आई। तो इसीलिए जैसे उस लड़के की बात को उसकी मां समझती है, तो शास्त्र की बात को भी परंपरा से गुरुओं से जब व्यक्ति सुनता है तो उसका क्या अर्थ है वो बोधन होता है। तो इसलिए यहां जो विपरीत भावना है, पिता में शत्रु बुद्धि, उक्त लक्षणम प्रकृति जो ये थी, जो प्रसंग चल रहा था आत्मा में उसको, ये तो दृष्टांत हो गया, दृष्टांत जो है आत्मा में उसको घटा करके दिखाते हैं। आत्मा देहादि भिन्नोयम् मिथ्या चेदं जगत्तयोः देहाद्यात्मत्व सत्यत्व धीर्विपर्यय भावना। आत्मा में उसको घटा करके दिखाते हैं, अयम आत्मा देहादि भिन्न, जो आत्मा है वो देह आदि से भिन्न। यहां आदि शब्द जब कहते हैं ना, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर तीनों शरीर को ले लीजिएगा, सब देह में आएंगे, तो इन शरीरों से आत्मा पूर्ण रूप से भिन्न है, विलक्षण है। इदम जगत मिथ्या, वो सामने इदम रूप से जो परिदृश्यमान जगत है वो कैसा है, मिथ्या है, जो भी चीज दिखाई पड़ रही है वो सब मिथ्या है। तयो हो आत्मा और जगत, इन दोनों का उसमें देहादि आत्मत्व सत्यत्व धीर विपरीत भावना, आत्मा में देहादि में आत्मत्व धी और जगत में सत्यत्व धी, दोनों को विपरीत भावना शब्द से शास्त्र में संकेत किया गया है, कहा गया है। तो इसलिए अयम आत्मा वस्तु तो देहादिभ्यो भिन्न, ये जो आत्मा है, अयम आत्मा ब्रह्म कहते हैं ना, जो सबसे नजदीक में है आत्मा, वो कैसा है, देह आदियों से भिन्न है। लेकिन ऐसे लगता है कि आत्मा नामक कोई चीज शरीर के अंदर होगी, विवेक नहीं करने से पता नहीं लगेगा। अब आप सोच लीजिए, जैसे कोई लकड़हारा है, सवेरे उठ करके लकड़ी काटने के जंगल में चला जाता है और सारा दिन लकड़ी काटता रहता है, शाम को लकड़ी ला करके शहर में बिक्री करता है, थोड़ा बहुत पैसा उसको मिल जाता है, एक बोतल भी साथ में ले लेता है, और उसके बाद भोजन करके फिर पी लेगा, फिर सो जाएगा, फिर सवेरे उठेगा, फिर लकड़ी काटने के लिए जाएगा, फिर शाम को लौटता है, फिर बिक्री करता है, फिर पीता है, सोता है। उसके जीवन में शरीर ही आत्मा है, शरीर ही आत्मा है। केवल लकड़ी काटने वाला नहीं, जो पैसे के चक्कर में भी रहते हैं ये लोग भी हैं। सवेरे उठे कि बस आज कितने इनकम करना है, क्या करना है, मतलब पैसा का चिंतन चलता है। ध्यातम वित्तम अहर निशम नियमितम प्राणेर्न संभो पदम, ध्यान तो करते रहते हैं लेकिन ध्यातम वित्तम अहर निशम, दिन रात जो है वित्त का चिंतन करते हैं, इतना बैंक बैलेंस हो गया है, इतने और करना है, ये करना है, कहां से आएगा, कैसे आएगा, किस प्रकार आएगा, कहां उसको विनियोग करना है, कहां निवेश करना, यही चिंतन चलता रहता है। उनको भी आत्मा की कोई खबर नहीं है, मतलब बाह्य चीजों में महत्ता बुद्धि है, बाह्य चीजों को श्रेय समझते हैं, तो इसीलिए आत्मा का चिंतन वो लोग नहीं कर पाते हैं। हां, जो थोड़ा सत्संग करता है, सत्संग करने के बाद थोड़ा चिंतन भी करता है, तो आस्ते आस्ते उसको अनुभव में आएगा, ये सारी अनुभव की चीज है। कोई स्वर्ग में जाने से पता लगेगा ऐसी बात नहीं, जितने जितने आप चिंतन करेंगे उतने अनुभव में आपको ये सारी बातें आ जाएगी। तो इसलिए अयम आत्मा वस्तु तो देहादिभ्यो भिन्न, इदम जगत च मिथ्या, जो जगत दिखाई पर, जगत का मतलब जो कुछ शरीर, मकान, दुकान, जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, चाहे समुद्र है, पहाड़ है, नदी है, मनुष्य है, पशु पक्षी है, लता गुल्म है, जो कुछ भी है दिखाई पड़ रही है, सारी चीजें जो है मिथ्या है। एवं सत्यपि तयोः आत्म जगतयोर यथाक्रम देहादि रूपत्व बुद्धि ही सत्यत्व बुद्धिच या सा विपरीत भावना इत्यर्थ। तो ये जो दोनों चीज है, आत्मा शरीर से भिन्न ऐसी बुद्धि नहीं होना, वो परिदृश्यमान जो जगत है ये मिथ्या है ऐसी बुद्धि नहीं होना, सत्य लगेगा। तो अभी कहते हैं रामकृष्ण परमहंस जब थे ना, वो अभ्यास करते थे, टाका मिट्टी टाका मिट्टी टाका, माने जो टाका है ये मिट्टी है, पैसा यही मिट्टी है, उसका अभ्यास करते थे। तो वो छूते नहीं थे, कहते हैं पैसा को नहीं छूते थे, वैसे पहले मैंने बहुत अभ्यास किए, अब अभ्यास करते करते सामने पैसा भी आएगा ना, उनको मिट्टी जैसे दिखाई पड़ता है, पैसा सामने आ गया, इतने अभ्यास किए थे। कोई एक महात्मा कहते थे, एक बार उनके खाट के नीचे कुछ पैसा कोई रख दिया था, तो रात्रि में उनको नींद ही नहीं आई, रात्रि में नींद नहीं आई, सोचे कि चिंतन की क्यों ऐसा, रोज नींद इतनी अच्छी आती थी, आज नींद क्यों नहीं आ रही है, तो पता लगा कोई भक्त जो है उसमें, वो तो अपने श्रद्धा से देखेंगे यार, कोई रख दिया ऐसे, लेकिन इनको नींद नहीं आई। तो जैसे मिट्टी के ऊपर कोई व्यक्ति सोता है तो चुभता है ना, ठीक है, डनलप गद्दी डाल करके सोएंगे तो नहीं चुभेगा, मिट्टी के ऊपर ऐसे यदि सो जाएंगे तो इस प्रकार उनको जो है वो टाका जो है मतलब पैसा जो है चुभने लगा। फिर बाद में जब देखे तब हटाए तो फिर उसके बाद नींद आई। तो जगत मिथ्यात्व बुद्धि, बार बार चिंतन करने से उसमें मिथ्यात्व बुद्धि आएगी। जैसे आप सोच लीजिए, छोटे बच्चे खेल खेलते हैं, अब झूठ मूठ में उसमें भोजन बनाएंगे और भोजन पूछेंगे कैसा भोजन, अरे बहुत मीठा लगा। अब झूठ मूठ में उसको, लेकिन उनके माता पिता जब देखते हैं तो कहते हैं देखो ये झूठ मूठ में क्या सब व्यवहार कर रहे हैं, कुछ है नहीं, मिथ्या चीजों को सत्य के रूप में लेकर के खेल रहे हैं, कुछ नहीं, उनमें शादी भी हो जाती है, भोजन भी हो जाएगा, सब प्रकार के व्यवहार चलता है। लेकिन बड़े लोग उसको देखते हैं तो ठीक इसी प्रकार जो ज्ञानी व्यक्ति है, महात्मा लोग है, वो जानते हैं कि व्यक्ति कहां प्रवृत्त हो रहा है फालतू चीजों में, संसार में, जिसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इसको अर्थ उसमें दिखाई पड़ रहा है, सार्थकता दिखाई पड़ रही है, लेकिन समय आने पर वो सब व्यर्थ हो जाएगा, समय आने पर व्यर्थ हो जाएगा। तो इसलिए यहां दोनों चीजों को लिए हैं। एवं सत्यपि तयोः आत्म जगतयोर, आत्मा और जो जगत है, यथा क्रमम, क्रम से देहादि रूपत्व बुद्धि, आत्मा में देहादि रूपत्व बुद्धि और जगत में सत्यत्व बुद्धि जो हो रही है वही विपरीत भावना है। इस विपरीत भावना को ही हटानी पड़ती है, और विपरीत भावना यदि हट जाए तो व्यक्ति तो पहले से शुद्ध था, आत्मा कभी भी उसको कोई मलिन कर ही नहीं सकता है, अपनी भावना से ही व्यक्ति उसको मलिन समझता है। इसलिए उपनिषद में बात आती है असंगो अयम पुरुषः, अब दूसरा होगा तभी तो वहां संग होगा, कोई दूसरा होगा तभी वहां संग होगा, दूसरा तो है ही नहीं। तो स्वप्न के दृष्टांत उसमें देते हैं, शंकराचार्य भगवान विवेक चूड़ामणि में कहे कि जैसे एक व्यक्ति स्वप्न देख रहा था, अब स्वप्न क्या देखता है कि उसकी बहुत बड़ी बाग है और अनेक प्रकार के फूल फल उसमें लगे हुए हैं, चारों तरफ बाड़ लगा हुआ है, वो बेचारा बैठ करके किसी पेड़ के नीचे छाया में बैठा हुआ था। अब संयोग से एक गाय जो है छलांग लगा करके अंदर आ गई, और जब आ गई तो वहां फल फूल खाने लग रही थी, वो व्यक्ति गुस्से में आ गया, कैसे यहां आ गए, तो एक पत्थर उठा करके फेंकता है तो जाकर के गाय के मर्मस्थल स्थल में पत्थर लग जाता है, तो गाय वहां खत्म हो जाती है। वो अगल बगल में जो लोग थे ना, अरे ये गाय हत्यारा है, गौ हत्यारा है, चारों तरफ हल्ला गुल्ला हो जाए, सारे गांव में बात फैल जाती है, सब लोग कहते हैं ये गांव में रहने लायक नहीं है, इतने पापी व्यक्ति इसका मुंह देखना ही ठीक नहीं है, इसको गांव से बाहर करो। तो कैसे बाहर किया, उसके भी गले में जो है रस्सी डालो, और इस प्रकार गांव से उसको बहिष्कार कर देते हैं। अब बहुत दुखी होकर के गांव से चला जाता है, अब वो जाएगा और दूसरे गांव में भी भिक्षा मांगने ले जाता है तो सब दुत्कारते हैं, यहां क्यों आ गया ये, इसका मुंह देखना ठीक नहीं। इतने में उसकी नींद खुल जाती है, इतने में नींद खुल जाती है, तो गाय हत्या के पाप लगेगा कि नहीं लगेगा उसको। असंगो अयम पुरुषः, अभी जागृत अवस्था में भी जो कुछ हो रहा है ना, किसी के साथ कोई संग नहीं है, ये विपरीत भावना के कारण ऐसा लगता है कि संग हो रहा है। तो कैसे हटाया जाएगा उसके विचार पुनः हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिन व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पार्वती पतये हर हर महादेव।